ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका हार्दिक स्वागत। ऐसा नहीं लगता कि ओम शांति अब एक मंत्र बन गया है, एक ऐसा मंत्र जो हर तरफ सुनाई दे रहा है, क्योंकि मैं एक शांतिपूर्ण आत्मा हूँ ये एहसास हमें होता जा रहा है। आपका इतना सारा प्यार हमारे पास पहुँच रहा है, आपके फ़ोन कॉल्स, आपके ईमेल्स पहुँचते हैं और ऐसा लगता है कि एक पूरे परिवार की तरह हम जुड़े हैं। कहीं ना कहीं वो एनर्जी जिसकी हम बात करते हैं, वो आत्मा होने का एहसास हमें जोड़ता है। आपकी इतनी ब्लेसिंग्स हमें मिल रही हैं, आप सबका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और आज एक बार फिर इस सफ़र को शुरू करते हैं। हमारा सौभाग्य, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
ओम शांति।
सर शिवानी, आज की बातचीत शुरू करें और एक नए सफ़र पर चलें, उससे पहले थोड़ी सी बात ये करना चाहेंगे कि जो एक मैं बोल रही हूँ कि जिस तरह से परिवार हमारा जुड़ता जा रहा है, इतना प्यार मिल रहा है, इतने कॉल्स आ रहे हैं, ईमेल्स आ रहे हैं, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए।
मुझे लगता है सभी तरफ से, पूरे इंडिया से भी बाहर से, सभी देशों से और सभी एज ग्रुप, सभी रिलीजन्स, सो इट्स लाइक अ बिग फैमिली, यू नो, एवरीवन हैज जस्ट जॉइंड इन एंड इट्स सो वंडरफुल टू हैव एवरीवन टुगेदर एंड एवरीवन जस्ट सेंड्स इन लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स व्हिच वी आर वेरी थैंकफुल टू देम, क्योंकि सभी बड़े इतनी दुआएं भेजते हैं, इतनी गुड विशेस भेजते हैं। और सबसे ब्यूटीफुल चीज़ जो लगती है कि मेजोरिटी आर फीलिंग कि उनके जीवन में एक परिवर्तन आ रहा है। कई हमें ये भी लिखते हैं कि यू नो, कोई हमारे घर में ट्रेजेडी हो गई या कुछ ऐसी बात थी या कुछ एक अपने पर्सनल कॉम्प्लेक्स से गुजर रहे थे, और रेगुलर प्रोग्राम देखने से और मेडिटेशन का अभ्यास करने से दे हैव बीन एबल टू कम आउट ऑफ इट एंड विच इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट, यू नो, कि इट जस्ट गोज टू प्रूव कि जहाँ आप थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करो तो परिवर्तन कितना सहज है। जो आज तक हम सोच रहे थे नहीं, अपनी आदतों से मुक्त होना कितना मुश्किल है, वो कितना सहज अब लगने लग गया है।
अच्छा, एक बात और कहना चाहूँगी मैं, हमारे साथ भी दर्शक भी बहुत बार ये सोचते हैं कि ये ज्ञान जो हमें मिल रहा है, जो एक इतना सहज रूप से, जिसको इतना कॉम्प्लिकेटेड समझते थे, इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं लगती थी, इतनी आसानी से सॉल्व होती नज़र आ रही हैं, तो आप इतनी छोटी सी हैं, इतनी छोटी सी उम्र में ये कैसे समझ पाई हैं और कैसे उनके इतने बड़े बड़े जो मुद्दे हैं उनको सॉल्व कर पा रही हैं, तो ये एक पहेली सा अभी भी बहुत से दर्शकों के मन में है।
हम शुरू से यही कहते आए हैं कि ये ज्ञान सारा जो हमें मिल रहा है ये डायरेक्ट इस समय, इट्स नॉट जस्ट टू से इट बट इट्स समथिंग टू बी एक्सपीरियंस्ड, के ये डायरेक्ट निराकार परमात्मा, जिन्हें हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, तो परमात्मा स्वयं आकर इस समय हमें ये ज्ञान देते हैं। आज दिन तक महान आत्माओं ने हमें ज्ञान दिया, संत आत्माओं ने ज्ञान दिया और जो बहुत श्रेष्ठ ज्ञान हमें मिला, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें उसको इम्प्लीमेंट करने में मुश्किल लगता था। जिन्होंने हमें ज्ञान दिया उनके लिए वो बहुत सहज था और वो अपने जीवन में धारण कर पाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमें शायद समझने में मुश्किल था, शायद हमारी बुद्धि उतनी शार्प नहीं थी उसको समझने के लिए। लेकिन जब परमात्मा डायरेक्ट आकर हमें ज्ञान देते हैं तो वो सुप्रीम टीचर है, और सुप्रीम टीचर का अर्थ ही है जो मुश्किल से मुश्किल बात को बहुत सिंपल कर देते हैं। तो जो आज दिन तक मुश्किल लगता था कि आत्मा का अनुभव कैसे करें, यू नो, बिकॉज आई हैड ऑल्सो रेड सो मेनी बुक्स एंड लिसन टू सो मेनी पीपल, बट वो सारा कुछ सुनने के बाद कहीं ना कहीं पूरा एक और एक कन्फ्यूजन हो जाता था और लगता था समझ में तो आ गया, अनुभव कैसे करते हैं। तो वो आत्म अनुभूति एक कॉन्सेप्ट ही बन के रह गया कि ये पता नहीं कब होगा, और शिव बाबा ने आकर उसको इतना सिंपल कर दिया कि आप हो ही आत्मा, मतलब आप सारा दिन तो अपने आप को अनुभव कर रहे हो, अब सिर्फ जब आप अपने ओरिजिनल संस्कारों को अनुभव करोगे यू विल रियलाइज दैट इट्स सो सिंपल, इट्स सो ब्यूटिफुल। और फिर सबसे बड़ी बात तो परमात्मा की खोज, हम सब भगवान को ढूंढ रहे थे लेकिन हमारी कैपेसिटी में कहाँ था भगवान को ढूंढना, वो तो भगवान खुद ही आकर तो अपना परिचय दे सकता है, तो वो परिचय तो कोई भी और नहीं दे सकता।
बिल्कुल, और जिस तरह से हम उन्हें परम पिता मानते हैं, तो पिता जब समझाता है तो अपने बच्चे को जब समझा रहे हैं तो उसी की भाषा में इतनी आसानी
और उस लेवल से, बिल्कुल उस लेवल से समझाते, और क्योंकि सत्य ज्ञान सुप्रीम टीचर सुप्रीम फादर आकर देते हैं और हमें वही बातें बताते हैं जो हम जीवन में धारण कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं कही जाएगी जो हम जीवन में धारण नहीं कर सकते, और फिर बताते बताते चाहे वो बहुत हाई बात भी हो वो हमारे लिए इतना ईजी कर देते हैं और बात को धारण करने का तरीका भी बता देते हैं. सो इट्स एवरीथिंग इज डन. तो परमात्मा कहते हैं अब सब कुछ आपको मिल गया, समझ भी मिल गई, अब एक कदम हिम्मत का आप बढ़ाओ, एक कदम हिम्मत का आपका और हजार कदम मदद के मेरे साथ में. दैट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग. आज दिन तक हम एफर्ट कर रहे थे, इट वॉज नॉट कि हम अपने आप को चेंज करने की एफर्ट नहीं कर रहे थे, बट हम एफर्ट कर रहे थे, जस्ट मी द इंडिविजुअल. आत्मा तो इतनी डिस्चार्ज्ड है, वो एफर्ट करती भी तो उसको बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन जब परमात्म शक्ति साथ में जुड़ जाती है तो एफर्ट थोड़ा सा, मदद बहुत सारी साथ में, तो वो बड़े से बड़ा कार्य भी बहुत इजी हो जाता है.
सिस्टर शिवानी, एक और बात, अभी हमने क्योंकि राजयोग को भी हमारे बहुत से दर्शकों ने समझा, सब कुछ बाबा का परिचय मिला, संगम युग की बात आपने की कि ये वो युग है चाहे घनघोर अंधेरा है लेकिन फिर भी उसका साथ मिला है और ये सबसे सुंदर बात है. फिर भी कहीं ना कहीं, कभी ना कभी जिंदगी जीते हुए, सब कुछ समझते हुए भी, वो जो जब इमोशंस सामने आ जाती हैं, जब सिचुएशन सामने आ जाती हैं, उनकी हैंडलिंग में जो अंदर का जो टर्मोइल है, जो इमोशन है, वो अभी भी कहीं रुकावट करता है, तो उसको थोड़ा और गहराई में जाने की अभी भी ज़रूरत लगती है.
हम जो कर रहे हैं, जैसे सारे भाई बहने कहते हैं कि हम रेगुलर प्रोग्राम देखते हैं और उससे उनको बहुत प्राप्ति हो रही है, क्योंकि रोज़ जब हम परमात्मा द्वारा दिया गया इतना श्रेष्ठ ज्ञान सुनेंगे, और वो रोज़ पढ़ेगा, इन्फॉर्मेशन है जो रोज़ डलती जाएगी और उसको तरीका भी मिलेगा इम्प्लीमेंट करने का, और फिर अगर हम हिम्मत करते हैं तो हम उस तरीके को अपनाना शुरू करते हैं तो परिवर्तन तो आएगा ही. एक है कि हम इस परिवर्तन की यात्रा पर चलें, अब दूसरा है अगर आप इस यात्रा को और तीव्र गति से लेकर जाना चाहते हैं, अभी भी चल रही है और बहुत अच्छी चलेगी, लेकिन इसको अगर आप और फास्ट स्पीड से लेकर जाना चाहते हैं और इसको आप और इजी बनाना चाहते हैं, यू नो इट्स बोथ द थिंग्स, इट विल बी फास्ट एंड इजी, तो मेडिटेशन का और गहरा एक्सपीरियंस, क्योंकि मेडिटेशन से हमें पावर मिलती है. हमें नॉलेज और पावर दोनों चीज़ें चाहिए. अभी हम प्रोग्राम सुनते हैं, हमें नॉलेज मिल रही है तो नॉलेज से एफर्ट हो रहा है, लेकिन पावर चाहिए और पावर के लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है. अब कई भाई बहने हमें लिखते हैं कि हम कोशिश करते हैं, हो नहीं पाता या कभी कभी हो जाता है, तो उसके लिए सेंटर पर अगर समय निकाल कर जाएं, क्योंकि दैट इज़ वेयर इट विल बिकम वेरी इजी. सेंटर का एक वायुमंडल होता है, वहाँ बहने हैं जो हमें गाइड कर सकती हैं. हर सेंटर पे एक मेडिटेशन का रूम अलग से बना होता है, तो पूरे सेंटर का तो वायुमंडल होता ही बहुत पावरफुल है, लेकिन वो जो मेडिटेशन रूम होता है उसमें भाई बहने रेगुलर बहुत वर्षों से मेडिटेशन कर रहे हैं, तो दैट रूम इज़ लाइक अ चार्जर. आप जैसे ही उस रूम में बैठेंगे आपको एफर्ट कम और रिजल्ट ज़्यादा मिलेगी. अब यही चीज़ को जब हम घर पे करते हैं तो घर का वायुमंडल थोड़ा सा, यू नो इट्स गॉट एवरीथिंग इन इट, तो उसमें हमें एफर्ट थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा. इसका मतलब ये नहीं कि हम मेडिटेशन घर पे नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि अभी हम इनिशियल स्टेज पर हैं, अभी हमें वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है कनेक्ट करना, तो जब हम उस चार्जर में जाकर बैठ जाएंगे, हमें बहने भी वहाँ हेल्प करने के लिए होंगी, इट जस्ट बिकम सो ईजी. तो अगर आप दिन में थोड़ा सा समय निकाल कर भी जाते हैं, अगर रोज़ जा पाएँ तो यू विल बी फ्लाइंग आफ्टर सम टाइम, आपको लगेगा कि एफर्ट कुछ भी नहीं है. लेकिन अगर रोज़ नहीं भी जा पाते, संडे सैटरडे जो भी डे सूट करता, आप देखेंगे दैट विल ब्रिंग अ चेंज.
इनफैक्ट वही बात है कि हर बात हमारे इस पूरे सफर में ये रही है कि अनुभव, तो और उसके लिए एक ट्रायल, एक कोशिश ज़रूर करनी, वो हमें ही पहला कदम उठाना है, तो वो सेंटर तक जाने का पहला कदम भी जो है वो हमें ही उठाना पड़ेगा, और उसके बाद फिर 2 महीने बाद देखेंगे कि हमारा अनुभव, हम कहाँ खुद खड़े.
2 महीने के बाद आपके वो सिस्टम के अंदर फिट हो जाएगा, यू नो इट विल बी कि आपको सेंटर जाना नहीं पड़ेगा, आप अपने आप उठकर वहाँ पहुँच जाएंगे. यू नो इनिशियली हमें कुछ भी करने के लिए एफर्ट करना पड़ता है, यू नो एक्सरसाइज भी जब हम सोचते हैं करने का तो टालते रहते हैं पहले, तो यू नो कल कर लेंगे, क्योंकि अभी तक उसका मुझे प्राप्ति नहीं मिली है, तो मुझे एफर्ट करना पड़ रहा है. 10 दिन कर लें वो एफर्ट और वो एक्सरसाइज से बेनिफिट दिखे कि अरे बॉडी फील्स वेरी गुड, फिर सोचना थोड़ी पड़ता है करें या नहीं करें, नेचुरल हो जाता है, वी फील लाइक डूइंग इट. फिर हम ऐसी स्टेज पर पहुँचते हैं कि जिस दिन नहीं करते हैं तो उस दिन लगता है कि आज कुछ मिसिंग है, तो सेम थिंग हो जाएगा. उसके बाद हमें एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, सोचना नहीं पड़ेगा, सेंटर जाएं नहीं जाएं, टाइम निकालें, टाइम नहीं मिल रहा, टाइम ऑटोमेटिकली निकलता जाएगा. क्योंकि आप सारा दिन इतने हल्के रहेंगे, उड़ते रहेंगे, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होगा. जैसे कई ऐसी चीजें हमारे जीवन में होती हैं जो सारा दिन में, जो टाइम ना होते हुए भी हम उनको मिस नहीं करते. भोजन करना हम मिस नहीं करेंगे, एक या दो बार मिस कर लेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बिना ये शरीर नहीं चलेगा. तो वो काम जो हम करना चाहते हैं वो भी कैसे करेंगे. इसी तरह आत्मा के लिए भोजन है. हम सेंटर पे जाते हैं, ज्ञान सुनते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ये आत्मा को चार्ज करता है. तो वो मेरे को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बना देगा. तो अगर मेरी एफिशिएंसी को कोई चीज़ बढ़ा रही है, व्हाई विल आई नॉट टेक आउट टाइम फॉर दैट? आई विल डेफिनेटली गो फॉर दैट.
ओके, सो इट्स अ प्रॉमिस टू आवरसेल्फ्स एक्चुअली. एक अपने आप से वादा करेंगे कि ये एफर्ट एक आखिरी कदम शायद.
इट्स ओनली फॉर दोज हु वांट टू डू इट. सी अगेन, इट्स नॉट दैट यू हैव टू डू, बिकॉज़ देयर इज नो सच थिंग एज हैव टू गो टू एनीवेयर. लेकिन अगर, क्योंकि आप बहुत समय से देख रहे हैं और आप सोच रहे हैं अब आगे क्या, अब इस यात्रा को और आगे कैसे बढ़ाएं, देन दैट इज द स्टेप.
वही जो जिज्ञासु है उसी के लिए वो आगे का सफर होता है. और मुझे लगता है कि हम में से ज्यादातर लोग जो हैं वो उस आगे के सफर पे भी जाना चाहते हैं. व्हाट एग्जैक्टली इज इमोशन? यू नो, मतलब क्या है वो बेसिकली?
आजकल कॉर्पोरेट सेक्टर में भी अगर हम देखें, या एजुकेशन सिस्टम में बच्चों के साथ, एक नया कॉन्सेप्ट निकल कर आया है विच इज़ कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस. लगभग लेट्स से 10 years बैक से ये कॉन्सेप्ट निकला है. उसके पहले ऐसा कोई वर्ड नहीं था, इमोशनल इंटेलिजेंस या EQ जिसके लिए हम कहते हैं. IQ वेरी कॉमन, पहले से हम सुनते आए कि इंटेलिजेंस, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस वी डिडंट नो. तो एक है रैशनल इंटेलिजेंस, जो IQ हम कहते हैं कि हमारी लॉजिक कितनी अच्छी है, यू नो, एनालाइजिंग पावर कितनी अच्छी है, हम रैशनलाइज कितना अच्छा कर पाते हैं. तो रैशनल इंटेलिजेंस पर हम बहुत समय से चलते आए, और आज इतना कुछ जो हमने क्रिएट किया है, दैट इज़ ऑल अ रिजल्ट ऑफ रैशनल इंटेलिजेंस, जो कि इट्स वेरी गुड. लेकिन उसका एक छोटा सा ड्रॉबैक क्या हुआ कि हम बहुत ज़्यादा बाहर 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 की तरफ जहाँ जाते गए, तो कहीं हम इन द प्रोसेस अंदर से जो कनेक्शन था वो टूटता गया. वी वेंट लाइक दिस. आज हम कनेक्टेड बहुत अच्छा हैं सब एक दूसरे से. पहले हमें 15 दिन लगते शायद एक चिट्ठी भेजने कहीं पर, यू नो, लेकिन वो याद कितनी अच्छी थी, वो चिट्ठी फिर भी जो जाती थी वो कितनी फीलिंग्स और भावनाओं से भरी हुई थी. आज हम 1 सेकंड में ईमेल भेज सकते हैं, 1 सेकंड में सेल उठाकर उस पर बात कर सकते हैं, लेकिन हम एक दूसरे से शायद बात ही नहीं करना चाहते. तो वो जो रिलेशनशिप्स थे, क्योंकि अंदर से हम जितने खाली होते गए या अपने आप से डिस्कनेक्ट होते गए, तो हम औरों से भी डिस्कनेक्ट होते गए. तो इमोशनल इंटेलिजेंस हम ब्रॉडली अगर सोचे तो उसको कहेंगे समवन हु इज अवेयर ऑफ देयर फीलिंग्स एंड इमोशंस, यू नो, अवेयरनेस, कि एक जागृता हो कि मेरे अंदर क्या चल रहा है. अभी रैशनल इंटेलिजेंस है, जागृता है कि बाहर क्या चल रहा है. आई नो एवरीथिंग, कि दुनिया में क्या चल रहा है, कंप्यूटर के अंदर क्या चल रहा है, आई नो एवरीथिंग, दैट्स रैशनल इंटेलिजेंस. वो सब पता है. स्पेस में क्या चल रहा है, समुद्र के एकदम गहराई में क्या चल रहा है, मेरे अंदर क्या चल रहा है,
मैं,
हाँ, सी, तब जाकर एक क्वेश्चन मार्क आने लगता है. मेरी थॉट्स, मेरी फीलिंग्स, मेरी इमोशंस, उसका पूरा सिस्टम क्या है, उसको कौन क्रिएट कर रहा है, मैं क्रिएट कर रहा हूँ या बाहर वाले क्रिएट कर रहे हैं. यहाँ आकर मोस्ट ऑफ अस आर लाइक पता नहीं. एंड फिर क्योंकि हम बहुत ज़्यादा उसके ऊपर नहीं आंसर्स निकाल पाते, तो कहीं ना कहीं हम उस पर सोचना ही बंद कर देते हैं. एंड देन अगेन वी गो बैक टू द आउटसाइड वर्ल्ड. सी, दैट इज़ हाउ इट हैपेंड. क्योंकि हमें अंदर नहीं आंसर मिल रहा था, हम और बाहर जाने लगे, और बाहर जाने लगे, और अंदर से और दूर होते चले गए.
क्योंकि हमें इतनी आदत हो चुकी थी आंसर्स पाने की.
Yeah.
बाहर हर चीज का हमें एनालिटिकल पावर इतनी ज्यादा हो गई थी. Yeah. कि हर बात का आंसर मिल रहा था.
बाहर जो आंसर मिलता है वो इंस्टेंट मिलता है, यू नो, इंस्टेंट. बाहर जो आंसर मिलता है वो प्रूफ से मिलता है, और अंदर जो आंसर मिलता है वो अनुभव से मिलता है. तो देयर टू डिफरेंट थिंग्स. अब वो अनुभव करना, उसको एक्सपीरियंस करना, उसके लिए थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा. बट वी जस्ट थॉट दैट we're too fast, we're just moving too fast. And why were we moving too fast? Because hum bhool gaye the ki main kaun hu. Maine socha main sharir hu. Main sharir hu, तो शरीर को खुशी कहाँ से मिलेगी? फिजिकल चीज़ों से मिलेगी। शरीर की लाइफ कितनी है? बस इतनी है। तो इतने में मुझे सब कुछ बटोर लेना है। तो आई जस्ट वेंट फास्ट एंड फास्ट एंड फास्ट एंड सब कुछ मिल गया, लेकिन खुशी नहीं मिली, बिकॉज दैट्स नॉट व्हाट द बॉडी वांटेड। शरीर को जो चाहिए था वो सब मिल गया, कम्फर्ट सारे मिल गए, लेकिन जिसको खुशी चाहिए थी उसकी तरफ मैंने ध्यान ही नहीं दिया, तो जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा। तो इसीलिए नाउ वी हैव गॉन बैक टू आस्किंग आवरसेल्फ दैट क्वेश्चन कि हु एम आई,
व्हाट एम आई,
व्हाट इज माय पर्पस इन लाइफ, खुशी कहाँ से मिले, मेडिटेशन, यू नो सी, ये सिर्फ अभी होने लगा, बिकॉज हमने वो पूरी जर्नी कंप्लीट कर दी और जो ढूंढ रहे थे वो नहीं मिला। सो नाउ वी रियलाइज्ड कि इट्स अ डिफरेंट जर्नी। एक्चुअली हम दोनों जर्नी साथ साथ कर सकते थे। इसलिए कई बार लोग कहते हैं अभी नहीं प्रोफेशनल लाइफ कर लो फिर बाद में स्पिरिचुअल लाइफ करना, बट नहीं, आपको खुशी रिटायर होने के बाद थोड़ी चाहिए।
इनफैक्ट एक और अब भी मुझे कुछ सुनने को मिला कि कीप योर प्रोफेशनल एंड स्पिरिचुअल लाइफ डिफरेंट।
या नो, हाउ कैन यू से दैट? इट्स लाइक सेइंग यू नो फिजिकल मेंटल, ये भी तो दो स्तर है। तीसरा स्तर है स्पिरिचुअल। क्या आप कोई जब ऑफिस में आएगा आप उसको कहेंगे कीप योर फिजिकल एंड मेंटल लाइफ सेपरेट? नो, बिकॉज दैट पर्सन इज अ पैकेज, पर्सनालिटी है वो, एंड वो पर्सनालिटी तभी अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाती है जब मेंटली भी हेल्दी है, फिजिकली भी हेल्दी है, एंड नाउ स्पिरिचुअली भी हेल्दी है। सो यू कांट रियली से कि अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को अलग रखो। इनफैक्ट जितना उसको इंटीग्रेट करते जाओगे आपकी प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, वो और भी ज़्यादा अच्छी होती जाएगी। तो इमोशनल इंटेलिजेंस इज नॉट समथिंग वेरी बिग। अगेन इसको भी बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया आज इतनी सारी बुक्स, इतनी सारी वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग, सेमिनार, एंड वो इतना कॉम्प्लिकेट हो जाता है कि कई बार उसका जो सार होता है कि एसेंस में वो क्या है, इट जस्ट गेट्स लॉस्ट समवेयर।
दिस इज व्हाट आई वांटेड टू आस्क, यू नो, बिकॉज अब हम उस दौर में हैं, सडनली आई सी लॉट ऑफ पीपल टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी, यू नो, कहीं कितने कल्ट्स और कितने, इतना सारा है, इतना कन्फ्यूजन अब स्पिरिचुअलिटी का भी आ गया है कि हम बोलने तो लग गए हैं वही भाषा, लेकिन अंदर वही इतनी कन्फ्यूजन है। हाउ टू एक्चुअली यू नो सी व्हाट इज़ द रियल थिंग, हाउ टू रियली अंडरस्टैंड,
क्योंकि उसको भी शायद हम सिर्फ बाहर कर रहे हैं।
हाँ, और बिल्कुल बोल रहे हैं, वही भाषा बोलने लग गए हैं,
क्योंकि पढ़ ली ना।
हाँ,
पढ़ ली,
सुन ली,
सुन ली। अभी तक भी सब कुछ रैशनल इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? पढ़ रहा था, सुन रहा था और उसी को कर रहा था, अनुभव नहीं कर रहा था। अभी उसी की आदत पड़ी हुई है तो अंदर जाने का समय नहीं निकाल रहे हैं। तो किसी भी किताब से कुछ पढ़ लिया, किसी भी वर्कशॉप में कुछ सुन लिया, उसी को एक दूसरे के साथ चर्चा में ले आए और कहा वेरी गुड, वेरी गुड बुक, आपने ये बुक पढ़ी है, बहुत अच्छी, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, मोस्ट रेड बुक इन द वर्ल्ड, एवरीवन इज रीडिंग, बट वेयर इज द प्रूफ दैट आई एम रीडिंग दैट बुक? दैट प्रूफ has to come into me, but I just read it. मैंने अपने friends के साथ discuss किया, सबको बताया आप भी पढ़ो, बहुत अच्छी book है, close the book and finished, and then I go to the market and I buy the next book. But I'm not using it. तो ज्ञान is not just reading, listening and discussing. ज्ञान मतलब awareness, क्या आप वो, इसीलिए emotional intelligence मतलब awareness of मेरे अंदर क्या चल रहा है। अब जो मैंने पढ़ा या जो सुना उसको मैं internalize कैसे करूँ? एक सिर्फ एक sentence को ले लीजिए जो आपने पढ़ा, and you will need 1 week to work on it. It's not that simple. लेकिन एक बार आपने उसके साथ work कर लिया, it's there with you for a lifetime. उसके बाद कुछ नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अब वो आपके अनुभव में आ गया, और एक बार अनुभव की हुई चीज़ अगली बार एफर्ट नहीं करना पड़ता, वो आपके सिस्टम में नेचुरल आ जाती है। तो अवेयरनेस आ जाएगी अबाउट माय इमोशंस, माय फीलिंग्स। अवेयरनेस आते ही कंट्रोल आ जाएगा, कंट्रोल ओवर माय इमोशंस, मास्टरी ओवर माय फीलिंग्स। अभी क्या है, मेरी इमोशंस मेरे कंट्रोल में नहीं है, कभी कुछ आ जाता, कभी कुछ आ जाता। तो ये लो इमोशनल इंटेलिजेंस है। इस व्यक्ति को हम कहेंगे कि उनका अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है, वेरी लो इमोशनल इंटेलिजेंस, वेरी लो ईक्यू। तो जितना अवेयरनेस आएगी कि ये मेरी इमोशन है, ये अभी क्रिएट हो रही है, क्रिएट होते कि अवेयरनेस आएगी, गुस्सा क्रिएट हो रहा है, मुझे आने लगा, आई एम फीलिंग दैट एंगर, जैसे आई एम अवेयर, इफ आई एम नॉट अवेयर वो आ जाएगा, आई एल शाउट एट एवरीबडी एंड फिनिश्ड, एंड आफ्टर दैट आई एल बी अवेयर कि ये सारा कुछ हो गया, दैट्स लो। लेकिन इफ आई एम अवेयर जब वो क्रिएट होना शुरू हो रहा है, आई कैन कंट्रोल इट राइट देयर। और ये एक जर्नी है जिसको हम करेंगे थोड़े दिन, कि ये जब हम करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे ये मेरे इमोशंस मेरे कंट्रोल में आते जाएंगे, एंड दैट इज अ हाई इमोशनल इंटेलिजेंस।
इफ यू टॉक अबाउट इमोशंस, व्हाट एग्जैक्टली इज मेंट बाय इमोशन? बिकॉज इमोशनल स्ट्रेंथ, इमोशंस को भी बहुत अभी भी हम बहुत पॉजिटिवली लेते हैं कि मेरे इमोशंस बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांगली फील करता हूँ मैं, या
फील करता हूँ, सी मैं स्ट्रांगली फील करता हूँ, दैट्स ओके। इमोशंस डिफरेंट, फीलिंग डिफरेंट। अभी क्या हुआ है कि बिकॉज वी नॉट अवेयर कि वो एग्जैक्टली क्या है, तो हम इमोशन वर्ड और फीलिंग वर्ड को एक ही भाषा में यूज कर लेते हैं कि एज इफ दे बोथ द सेम थिंग, बट एक्चुअली दे आर टोटली,
अच्छा, इमोशन, बीइंग इमोशनल एंड हैविंग फीलिंग्स इज अ टोटली डिफरेंट थिंग।
टोटली डिफरेंट थिंग। अभी बीइंग इमोशनल इज इवन टेकन इन अ वेरी पॉजिटिव सेंस, लाइक वी सेड बीइंग सेंसिटिव, यू नो, बीइंग सेंसिटिव। हम इसे, आई एम वेरी इमोशनल, कि क्या मेरे पास, मेरे इमोशंस पे कोई कंट्रोल ही नहीं है, कोई रो रहा है तो मैं भी रो देता हूँ, तो दैट्स नॉट अ स्ट्रेंथ एक्चुअली। इट जस्ट शोज कि आप कितनी जल्दी
डिप्लीट
हो जाते हैं, कि आपका अपने ऊपर बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, परिस्थिति और सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर हावी हो जाता है और आप फील करते हैं कि वो इमोशंस आपके अंदर क्रिएट हो जाते हैं, तो एक्चुअली आई एम नॉट इन कंट्रोल ओवर माई सेल्फ। इमोशंस वेरी सिंपली इफ वी टेक इट, इवन साइकोलॉजिकली साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स वुड टेक इमोशन इन अ हेल्दी वे, दे थिंक इट्स हेल्दी क्रिएशन
एक्चुअली,
या बट अगर स्पिरिचुअल लेवल पर हम उसको समझते हैं एट अ डीपर लेवल, तो इमोशन इज एक्चुअली अ डिस्टर्बेंस, अ डिस्टर्बेंस इन द एनर्जी ऑफ माई कॉन्शियसनेस, विच हैपन्स वेन समथिंग और समवन टू विच आई एम अटैच्ड इज थ्रेटन्ड और मूव्ड। सब कुछ ठीक चल रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, तो मेरी कॉन्शियसनेस की जो एनर्जी है वो बिल्कुल स्टेबल है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक चल रहा है। आप आए और आपने ऐसे हाथ मारो और ये कप टूट गया। इफ दैट कप इज वेरी प्रेशियस टू मी, यू नो, जैसे कईयों का होता है घर में दैट फ्लावर वाज इज वेरी प्रेशियस टू मी, या ये क्रॉकरी इज वेरी प्रेशियस, मतलब आई एम अटैच्ड टू दैट, तो टूटा तो ये, लेकिन डिस्टर्बेंस यहाँ क्रिएट होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑफ माई अटैचमेंट ये कप था और इस ऑब्जेक्ट को किसी ने आकर हिला दिया, और जैसे ही मेरे अटैचमेंट के ऑब्जेक्ट को किसी ने हिला दिया, मेरी जो एनर्जी अंदर वो डिस्टर्ब हो जाती है, एंड दैट कुड बी एन ऑब्जेक्ट, इट कुड बी अ पर्सन, यू नो, माई रिलेशन, समबडी आई एम वेरी क्लोज टू, समबडी आई एम वेरी अटैच टू, उनको कुछ हो गया, अगर वो बिल्कुल ठीक है, आई एम ओके, एनर्जी इज ओके, उनको कुछ हो गया, एनर्जी यहाँ डिस्टर्ब, क्योंकि attached got disturbed, I got disturbed. The emotion hamesha ek disturbance ke roop mein create hoga, and the different kinds of emotions, even dictionary mein agar aap dekho ke what is the meaning of emotion, it says agitated mind. Because stable tha lekin kahin kuch hua aur yahan ek agitation शुरू हो जाती है, और सारा दिन में अगर हम देखें कि हम कितने प्रकार की इमोशंस क्रिएट करते
हैं, you know, कि
आप सारा दिन में हो रहा है, आप स्टेप बाय स्टेप जस्ट कीप वॉचिंग, इट्स हैपनिंग एवरी टाइम, सारा दिन में चेक करें कि ये डिस्टर्बेंस कितनी बार होती है, कितनी, और आप पाएंगे कि इट्स जस्ट टू ऑफन, इट्स हैपनिंग वेरी वेरी ऑफन, बिकॉज अटैचमेंट्स बहुत सारी हैं, अटैचमेंट्स ऑब्जेक्ट से हैं, अटैचमेंट्स लोगों से हैं, अटैचमेंट्स इस शरीर से हैं, अटैचमेंट्स अपने बारे में जो सोच के रखा है, आई एम अ वेरी सिंसियर पर्सन, अटैचमेंट है उस इमेज के साथ, किसी ने आकर कह दिया आपका तो काम सारा गलत है, डिस्टर्ब्ड, क्यों, क्योंकि मेरी वो जो इमेज थी, किसी ने आकर उस इमेज को हिला दिया, तो जैसे ही वो इमेज हिलेगी मैं हिल जाऊंगी, सो वन डे जस्ट स्पेंड इन दिस एंड यू विल रियलाइज कि हाउ मेनी टाइम्स इट गोज, एंड दैट्स व्हाई इट्स हैपनिंग सो ऑफन। इसीलिए लोग कहते हैं थोड़ी सी शांति चाहिए, क्यों थोड़ी सी शांति चाहिए, जबकि आई एम अ पीसफुल बींग, क्योंकि ये स्टेबिलिटी वाली जो स्थिति है ये सारा दिन में बहुत कम रह रही है, वो डिस्टर्बेंस बहुत फ्रीक्वेंटली क्रिएट हो रही है। अब जब हम अवेयर होते जाएंगे कि ये डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, now I'll be able to take the next step of controlling it.
And before actually getting into that emotion, the awareness will stop me.
अभी पिछले एक दो मास में हर रोज टेलीविजन पर शाम को जो मैच आता था क्रिकेट मैच, विच इज़ ओके, आई मीन इट्स नॉट द क्रिकेट मैच इज़ नॉट द प्रॉब्लम, लेकिन एक पूरा देश और मिलियंस ऑफ पीपल, वेरी मैच्योर पीपल, ग्लूड टू दैट टेलीविजन एंड उनके इमोशंस, यू सी, अब कोई कहेगा बट दिस इज गुड,
यूफोरिया,
इट्स हेल्दी, इट्स वेरी अनहेल्दी, इट्स वेरी वेरी अनहेल्दी, क्योंकि आप अपनी स्टेबिलिटी को एक मिनट ऐसे, क्योंकि एक मिनट एक सिक्स हो जाएगा तो एक मिनट कोई आउट होगा, वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, और अगर आपने उसको अपने ऊपर हावी होने दे दिया है तो क्या होगा कि आपकी कॉन्शियसनेस की जो एनर्जी है वो भी एक मिनट बहुत हाई और फिर एक मिनट एकदम लो, और वो रोज़, क्योंकि आप उस यू नो वंस इन अ वाइल इज़ ओके, बट बिकॉज ये दिस वेंट ऑन फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स एंड आप रोज़ देख रहे थे उसको दो घंटा उतनी देर, इट्स काइंड ऑफ एन एडिक्शन,
क्योंकि वेरी टायरिंग
इट इज़, क्योंकि आप इट इज़ टायरिंग, यस, लेकिन वो रोज़ होने से क्या हुआ कि आपके मन को उस इमोशनल डिस्टर्बेंस की आदत पड़ जाती है,
देन यू स्टार्ट लुकिंग,
यस, एंड देन यू विल स्टार्ट लुकिंग फॉर अ स्टिम्युलेंट विच विल क्रिएट दैट डिस्टर्बेंस एंड दैट इफेक्ट्स द बॉडी ऑल्सो, क्योंकि बॉडी में भी केमिकल्स हो जाते हैं, तो बॉडी को भी आदत पड़ गई है, तो नाउ यू विल स्टार्ट लुकिंग फॉर things outside to create that emotional disturbance.
Sister Shivani, I'm amazed, you know, every time we pick up a topic, there's something which, like, जिसे हम ये सोच रहे होते हैं कि वो normal है, वो सहज है, वो ज़िंदगी में होता ही है, ऐसा ही होता ही है, it comes out कि it can be different actually, you know, and वो जो कहीं ना कहीं अनजाने में ही हम पूरी एनर्जी को डिप्लीट कर रहे हैं, वो कैसे कंटेन करके हम एक बेहतर ज़िंदगी जिसे हम तलाश रहे हैं उसे पा सकते हैं, इस पूरी बातचीत को हम आगे जारी रखेंगे. आज की इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. ओम शांति.
ओम शांति.
ये सफ़र यूँ ही चलता रहेगा. अगर आपके पास कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा सवाल है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, हर बार की तरह एक खुला निमंत्रण आपको देते हैं. आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं. और अब वक्त है कि आपसे विदा लें. अगले एपिसोड में, अगली कड़ी में फिर होगी मुलाकात. अब दीजिए इजाज़त. ओम शांति.